घोड़ा उड़ा, कैसे कागज का घोड़ा? एक साधारण घोड़ा जाता जी आकाश में उड़ रहा है। फूल बांधते हैं कवि की कल्पना, ये कवियों की कल्पना है जो भगवान का नाम सुनने से ही आदमी का मंगल हो जाता है। कहां मंगल हुआ हमारा? देखो तो कृष्ण की कथाएं तो रोज सुनती हैं, उनको देखती हैं। आज हमारी ये दुर्दशा क्यों कैसे हुई? आज हम रो रही हैं, जंगल में मारी मारी फिर रही हैं। कब्बेतम कल्मषाप हम श्रवण मंगलम, श्रवण करने से ही कृष्ण की कथाओं का मंगल हो जाता है हमारा। बात ठीक नहीं, अमृत है, खबरदार कृष्ण की बात मत सुनो, कृष्ण की कथा मत सुनो, कृष्ण का नाम मत करो, नहीं तो हमारे जैसा तुम्हारा जीवन दुखी हो जाएगा। ये कवियों की कल्पना है इसलिए खबरदार मत सुनो, नहीं तो हमारा जीवन ऐसे ही पक्षियों की भांति चारों तरफ में वृंदावन में भीख मांगते हुए रहेंगे, अपने भी रोएंगे, घर वालों को भी रुलाएंगे। मत सुनो उनकी बात है, ये अमृत नहीं मृत है। जो बगल में पोथी दबाए हुए मस्तक मुंडन करके भागवत की पोथी यहां पर ले लेते हैं, खड़ा ऊपर चढ़ करके चलते हैं, कुछ भी नहीं, और इनकी कथाएं बिना पढ़ा या बिना पैसा ही हम कथा सुनाएंगे, आ जाओ, और सुना करके उसका चित्त गड़बड़ कर देते हैं, घर में जो स्नेह था उसको भी चौपट कर देते हैं, ना घर का रहा ना घाट का रहा, ऐसी थी ये। और पथ का भिखारी कर देता है, इसलिए कृष्ण कथाओं को सुनना उचित नहीं है। जो लोग बगल में पोथी दबाए हुए भागवत की जाकर के कथाओं बिना पैसे का सुनाते हैं लोगों का, उनके समान हत्यारा जगत में कोई नहीं है, खबरदार उनकी बातें मत सुनो, नहीं तो हमारी जैसी दशा हो जाएगी। ये स्तुति ब्याज कहते हैं, ब्याज स्तुति, ये प्रशंसा ही है कृष्ण की कथाओं का। जो सुनेगा कृष्ण में ऐसा चित्त लग जाएगा, संसार से वो परमुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से कृष्ण ने सुना और सुनते ही अपरह नहीं सके, एकदम उनके सामने आए, किसी गोपी ने देखा ये कृष्ण लज्जाते हुए आ रहे हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और वही बनमाला जिसने हमने कृष्ण को दी थी। जब वहां पर आए गोपियों ने उनसे पूछा, आज का प्रसंग यही था, जैसे दो एक श्लोक भागवत का आपको सुनाए, ये कितना रसिक कितना रसस्वरूप कितना मनमोह साथ साथ कितना शिक्षा प्रद है, इनके सुनने से ही कल्याण होता है। गोपियों ने कहा भले आए, गोपियों ने अपनी दुपट्टे सब जिसमें कि उनके अंगों का वो अबीर लगा हुआ था, लाल कुमकुम एक पर एक कर करके रख दिया, मोटे मोटे आसन बनाए, एक एक पक्ष की गोपियां एक एक अपना आसन बनाया अलग अलग, चंद्रावती की सखियों ने एक जगह, राधा जी की सहेलियों ने एक तरफ, भद्रा की सखी ने एक तरफ, इसी तरह से श्यामला की सहेलियों ने एक तरफ, जैसे जैसे भावना की थी वैसे वैसे उनके आसन बनाए, और कृष्ण सब पर विराजमान हुए, सबने देखा जी हमारे आसन पर बैठ रहे हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन तू लज्जित होकर के, हाँ हाँ तुम लोग ये समझ रहे हैं कि आज हमने तुमको बड़ा कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिया हमारे लिए, तुमने लोक लज्जा धर्म और धर्म सब कुछ तुमने छोड़ दिया, पतियों को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा, घर को छोड़ा, सब छोड़ दिया, और हमने तुम्हें छोड़ करके चला गया था, बात है ना, ऐसा ही समझती है। गोपियों ने उनसे पूछा मिथो भजंती भज तो अनुभजंत एक एक परिजयम नो भयांश भजंत एको एतन नो गुरु साधु। गोपियां कृष्ण से प्रश्न कर रही हैं। एक गोपी ने कृष्ण का हाथ अपने कंधे पर रख लिया, एक दूसरे ने उनका हाथ लेकर के चुंबन किया और उसको अपने हाथों में रख लिया, किसी ने उनके चरण को अपने गोदी में रख करके संभालती हुई सहलाने लगी, जैसी गोपियां थी उसी भावना के अनुसार में, और कुछ गोपी, एक गोपी खड़ी थी दूर तिरछी नजरों से कृष्ण की तरफ में देख करके आंखों के माध्यम से उन पर बाण का प्रहार कर रही है, मानो क्रोध से मुंह को ऐसे किया, कैसे तुम हो, हमें छोड़ा, रात में बिल बिलाती हम भटक रही थी वन में, ये क्या उचित था, पूछ रही है, भज तो अनुभव हमको बतला देना, 10 मिनट 55 मिनट हो गया 55 मिनट हो गया
और 10 मिनट में, और 10 मिनट में होगा कि छोड़ना है? 10 मिनट चलेगा?
तो पूछ रही है भजत वो अनुभजंते एक। अरे प्यारे जरा बतलाओ तो, तुम तो धर्म के अवतार कहते हो जिसे तुम ब्रह्म है, तुम्हारे प्रश्न का एक उत्तर दो। एक व्यक्ति से एक व्यक्ति प्रेम करता है, एक दूसरे से प्रेम करता है, और एक होता है प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करता है, ये दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न क्या है, जो किसी से भी प्रेम नहीं करता, जो प्रेम करता है उससे भी, और जो नहीं करता है उससे भी, किसी से प्रेम नहीं करता, ये तीन प्रकार के लोग होते हैं जगत में। प्यारे ये तो बतलाओ जैसे इन तीनों में से तुम कौन हो, किस श्रेणी के हो? पहला, एक व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम कर रहा है तो वो भी इससे बदले में प्रेम करता है, एक प्रकार के श्रेणी के ऐसे लोग हैं। दूसरे हैं प्रेम नहीं करते तो भी वो दूसरे से, वो जो दूसरा व्यक्ति है वो प्रेम नहीं करता तो भी प्रेम करते हैं। और तीसरा है प्रेम करो ना करो कोई मतलब नहीं, किसी से प्रेम नहीं करता। तो प्यारे ये तो बतलाओ धर्म धुरंधर, आप इनमें से कौन से श्रेणी के हैं? कृष्ण मुस्कुराने लगे, बोले जैसे प्यारी गोपियों मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, मैं इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। तो नहीं, मैं इनमें से कोई नहीं हूं, तो फिर आप कौन है? तो जरा व्याख्या तो सुन लो, जो प्रश्न किया उसका उत्तर। प्रेम करने पर जो प्रेम करता है वो बनिया है सीधा साधा, है? एक पैसे का माल दो, पैसा दे दो और उसके बदले में ले लो कुछ, बल्कि और करेगा, डंडी जरा ऊंचा नीचा मार लेगा, डंडी मारना जानते हैं? डंडी मारेगा उसमें से भी। और तीसरी बात, घटिया माल दे देगा, दिखलाएगा अच्छा माल और नकली मिला हुआ वो माल देगा, तो उसमें से एक पैसे में भी आधा पैसा बचा लेता है। तो प्रेम जो करता है और प्रेम करने वाले को जो प्रेम करते हैं वो बनिया है सीधा सीधी, उसमें धर्म का सौहार्द कुछ भी नहीं है, ये तो सीधा सीधी बनियागिरी है। इसलिए तुम लोग हमें जो प्यार करती है तो मैं तुम्हें जो प्यार करता हूं तो ये बनियागिरी होगी। मैं इनमें से नहीं हूं, मैं बनिया नहीं हूं, मैं तो सीधा साधा ऐसा हूं, सरल हृदय का हूं। दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो, इसलिए ऐसा समझिए, हम कहते हैं जी हे भगवान हमें बेटा दो, और भगवान ने बेटा नहीं दिया, कहे भगवान ये सालग्राम बेकार के हैं, जमुना में गंगा में फेंका हो, डॉक्टर की जय रहो, हमारा लड़का बीमार आपने ठीक नहीं किया, ऐसे भगवान की क्या जरूरत है, हमारे बेटे को तुमने बचाया नहीं, चलो आज तुम्हारी दुष्ट तुम्हें करती हूँ, सालग्राम को, गिरिराज जी को और राधा कृष्ण की मूर्ति थी तीनों को उठाया और लेकर के जमुना में या गंगे में समुद्र में फेंका, लो तुम तो कोई जरूरत नहीं, ये बनियागिरी है। भगवान से ऐसा मत सोचो। दूसरी बात, अब चलो प्रेम नहीं करने पर भी जो प्रेम करता है ये गुरु और माता पिता है, निस्वार्थ जो माता पिता है। बेटा को पुत्र हो जाएगा, बेटी को पुत्र हो गई, किंतु मैया कभी बाप कभी कुपुत को पिता और को माता नहीं होती, सब पर वो स्नेह करते हैं। बेटे को विवाह दे दिया और वो अपना नौकरी उसको मिल गई, बस निर्मोही होकर के अपनी पत्नी को लेकर के दूसरी जगह में चला गया, माता पिता की सुध नहीं लेता, तभी बेटा पिता मानता नहीं, घर में आता है, बेटा ठीक है, कोई चीज की जरूरत है? पिता को पुत्र नहीं होता है यदि सचमुच में पिता है। और गुरु शिष्य माने चाहे ना माने, शिष्य यदि कुछ भी करे किंतु गुरु कहता है कि इसका कल्याण मंगलम भवतु, कभी भी उसका अपकार नहीं सोचा, जाओ कहा जैसे हमको 1,00,000 रुपया दे दो, शिष्य गुरु ने कहा हमको कार खरीदनी है, 80,00,000 में कार खरीदनी है, तो मैं 80,00,000 रुपया हमको जुटाना है तो हमको एक लाख दो लाख रुपया दे दो। शिष्य ने कहा जी अरे हमारा तो बेटा मर गया अभी और आप मुझसे रुपये चाह रहे हैं, मैं अभी तो रुपया नहीं दे सकती। तो जाओ तुम्हारा नरक होगा अभी, मैं अभी संपात करता हूं। अजय ऐसे गुरु को हवा बंधन लगने दो, उनको घर में बाहर में उनको रखो, वैसे गुरु से कोई भी संबंध नहीं है। अरे गुरु कहां हमारे हृदय में शीतलता देगा, उसको अर्थ से क्या प्रयोजन, वो परमार्थ लोगों को देगा, कोई इतना भयंकर स्वार्थी होगा, यह गुरु का लक्षण नहीं। इसलिए गुरु कैसा है इसमें बतला रहे हैं, बेटा और शिष्य स्नेह नहीं करने पर भी गुरु और पिता उसको स्नेह करते हैं, मैया उसको स्नेह करती है, इसमें धर्म भी है सौभाग्य भी है और इसमें सब कुछ है। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम लोग इसी जाति की हो गोपियां, मैं इसमें नहीं हूं। कृष्ण प्यार करें ना पा रहे हैं, गोपियां नहीं मान सकती, उनको स्नेह करेंगी, उनको हृदय अपना दे दिया है, ऐसा ही होना चाहिए। तीसरी बात, जो लोग भजन करें और ना करें, कोई प्रेम करें और ना करें, वो किसी को प्यार नहीं करता, वो कौन है, वो चार श्रेणी के व्यक्ति, चार श्रेणी के वो हैं, कौन है, आत्माराम, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि हैं आत्माराम, आत्मा में रमण करने वाले हैं, शरीर से कोई मतलब नहीं है, कोई प्यार करता है नहीं करता है, दो केले देता है, हलवा दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, उनको कपड़े की जरूरत नहीं, हवा की भी उनको जरूरत नहीं, उनको किस चीज की जरूरत है, इसलिए उनसे प्यार करो। तुम प्रेम करेगा तो यही तो कहेगा जी महात्मा जी हमको जरा आप कृपा कर दीजिए, हम सुखी जीवन में रहूं। वो देखते हैं कि सभी भगवान का भजन कर रहे हैं, वो आत्म में रमण कर रहे हैं, उनको बाहरी दृष्टि है ही नहीं है, और जिनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, ऐसे आप काम व्यक्ति हैं, सनक सनंदन सनत कुमार, कोई लाख उनकी कुछ करता है, अपने आप यदि कृपा करके दृष्टि हो जाए तो दूसरी बात है, किसी का कुछ चाहते नहीं, उनको कोई चीज का जरूरत नहीं है, वो कल्याण समस्त जाति का विश्व का कल्याण समझते हैं, उनका प्रेम ऐसा है। मैं ऐसा भी नहीं हूं न आत्मकाम हूं, आत्मकाम होता तो तुमको बुलाता कैसे बंसी पर, और यदि आत्म ही काम होता तो जसोदा मैया के मक्खन नहीं देने समय क्यों रोता, और उनमें क्रोध है ना, मैंने दही का उनका मटकी मैंने तोड़ दी और माखन और रोटी के लिए मैं बिगड़ जाता हूं, तो मैं कहां ऐसा हूं, तुमको बुलाया क्यों, तुम्हारे साथ में नित्य क्यों किया, और अभी तुमको तुम्हारे बुलाने से मैं आ गया ना, आत्माराम भी नहीं हूं, आत्मकाम भी नहीं, मैं इसे बहुत ऊंचा हूं, क्या हूं। दूसरे एक ऐसे होते हैं गुरुद्रोही, गुरुद्रोही मैंने क्या, माता पिता घर में हैं पूछते नहीं है, उनकी अवज्ञा करते हैं, बिना कारण ही, यदि पिता ने जरा रात में खांसना आरंभ किया, खांसी हो गई है, दम्बा हो गया, श्वास जोर से चलता है, ये दिन रात बूढ़ा खांसता है, जहां तहां थूक फैलता है, ये मर क्यों नहीं जाता, ये कौन है, गुरुद्रोही है, उनकी सेवा नहीं नहीं जानता, जैसे उन्हीं के से हम आए हुए हैं, उन्होंने बचपन में हमारा पालन पोषण किया, यह सब धर्म कर्म करने पर भी इनका कुछ भी नहीं होगा, माता पिता का हम ऋण कभी भी चूर ऋण नहीं हो सकते हैं, इस चीज को समझो, इसलिए उनका आदर होना चाहिए। कहते मैं उससे भी ऊपर हूं, मैं गुरुद्रोही रहता तो तुम्हारे पास में आता नहीं? और अकृतज्ञ, तुम कह सकती है कि तुम अकृतज्ञ हो, गुरुद्रोही तो नहीं हो क्योंकि आ गए, किंतु हो तुम अकृतज्ञ। अकृतज्ञ किसको कहते हैं, की हुई भलाई को नहीं मानने वाला, पशु भी कभी भूलते नहीं हैं, उनके प्रति उपकार करो। तो और कृष्ण हम लोग सब कुछ छोड़ करके घर से आई, और तुमने अंतर्ध्यान तुम हो गए और हमें कितना दुख दिया, इसलिए तुम अकृतज्ञ हो। कोई कारण हो तो माता पिता से, ना तो कोई
कुछ गड़बड़ करे। माता पिता को सब, माता पिता सब समय बच्चे को गाली देता है, कभी घर से निकल जाओ तो वो बात है ठीक कुछ, किंतु कहां ऐसा नहीं करता। तो भी माता पिता का आदर करना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा श्रवण कुमार का नाम, अपने बहन की पर अपने माता पिता अंधे को लेकर के, बूढ़े को लेकर के देश विदेश घूमते थे, उनके लिए क्या नहीं किया, और माता पिता का आशीर्वाद से कैसे फल फूल गए। मैं अकृतज्ञ भी नहीं हूं, मैं तुम्हारी प्रत्येक बात का मैं हृदय में ध्यान रखता हूं। मैं थोड़े कहीं गया था ना, हम तो सब थो भजतो भजन्तो भजाम ईशान अनुवृत्ति वृत्तये यथा धनु लब्ध धने विनष्टे तत् चिंत्यान निभतो अनुभेदा। मैं थोड़े कहीं गया था, मैं देख रहा था कि हमारे अंतर ध्यान में तुम क्या करती हो, तुम्हारा प्रेम कैसा है। मैं थोड़ा कुछ सुनना चाहता था, देखना चाहता था। ओह आज मैं देख करके मैं अद्भुत मैंने देखा, तुम्हारे इस भाव को जगत में प्रचार करने के लिए कि गोपियों के समान और कोई किसी का प्रेम हमारे प्रति नहीं है, इसीलिए मैं अंतर ध्यान हो गया था। कैसे, जैसे किसी व्यक्ति को, दरिद्र व्यक्ति को मिल गया पारस पत्थर। पारस पत्थर का नाम सुना होगा, देखा तो नहीं, हमने भी नहीं देखा किंतु सुना है, स्पर्श करा दो लोहे में तो वो सोना बन जाएगा। तो इससे भी बढ़कर के एक है मणि चिंतामणि, जो कुछ मांगो वो दे देगी, देखने में कांच जैसी। साधारण हम लोग समझेंगे ये कांच है, हीरे को हम लोग नहीं समझेंगे ये हीरा, ये है हीरा का टुकड़ा, जौहरी समझेगा। तो जैसे किसी दरिद्र व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए और उसको कांच समझ करके उसको कहीं रख दिया और कोई उठा दिया, एक दिन के बाद में कोई व्यक्ति है भी वो जो पत्थर था वो कहां है, कहीं कौन ले गया, देख नहीं रहा, अरे वो पत्थर नहीं था, वो तो स्पर्शमणि थी, उसे जो कुछ मांगता वही दे देती। तब हाय हाय मैं कहां छुड़ाया। अभी कोई एक व्यक्ति $500 का कोई नोट पॉकेट में लेकर के बाजार करने गया, और जब बाजार करने गया देखा जी कहां, वो तो है नहीं पॉकेट में, क्या करेगा, दरिद्र आदमी हो तो गरीब प्राण सूख जाएंगे, कहां गई बाजार में, मैं कहां से बाजार करूं, क्या करूं। ऐसे ही मैं तुमसे मिला और मिल करके अपने प्रेम को तुम्हारा बढ़ाने के लिए मैं यहां से थोड़ा सा लक्षित रूप में दूर हट गया था, जो तुम्हारा प्रेम बढ़े और देखूं ये तुम्हारा प्रेम कैसा है, इसलिए मैं कहीं नहीं गया। हे मेरी प्यारी गोपियों, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, न पारे हम निर्वध संयुजंग, न पारे हम निर्वध संयुजंग सुसाध कृतम विबुधा विषा विव माँ भजन दुर्जर गृह श्रृंखला संभ्य तत्व प्रत्याशा। वो गोपियां तुम्हारा और हमारा मिलना परम पवित्र है, समय हो गया, परम पवित्र है। तुम लोग बड़ी साधु हो, मैं तुम्हारा इस ऋण को मैं कभी भी जीवन भर नहीं चुका सकता, तुम अपने से खुश होकर के हमारा ऋण दूर कर दो। क्यों, इसलिए तुम कहोगी जैसे तो ऋण पूरा कर दो, जी कैसे पूरा करें। कृष्ण कहते हैं तुमने तो घर बार छोड़ करके और सब स्त्री पुरुष सब जो सबको छोड़ करके घर बार लज्जा सब छोड़ करके आई है अकेले, एकमात्र इच्छा हमारी सेवा करने की, और हमारे तो लाखों कोटि सभी भक्त हैं, मैं किसको छोड़ूं, किसके पास में आऊं, ये मेरे लिए संभव नहीं है किसी को भी छोड़ दूं, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी रह गया। तुम कहोगी, मैं कहूं जब परम गुरु ही वर मांगो तो तुम मांगोगे जिससे तुम्हारी सेवा मिले, तो फिर सेवा करने पर यदि सेवा मैं देता हूं तो फिर मैं और अधिक ऋणी हो जाता हूं, ये संभव पर मेरे लिए नहीं है। इसलिए लाखों जन्म तक हम जन्म लेकर के भी तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकते, इसलिए कहते हैं तुम प्रसन्न हो। इसको देख करके उद्धव जी क्या कहते हैं, आसाम हो चरण ऋण दुसाम हम श्याम वृंदावने कुमक गुल मलत औषधी नाम जस दुस्त जन स्वजन आर्य पथन चहित्वा भेजे मुकुंद पदवी सुत भेद। उद्धव जी जैसे लोग, नारद जी जैसे लोग, सुखदेव वैसे लोग कहते हैं हे गोपियों, तुम्हारे चरण की धूली यदि मुझे मन मिल जाए किसी प्रकार से, हम दूब की घास बन करके वृंदावन में हमारा जन्म हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तुमने कृष्ण के लिए जो सर्वस्व सब कुछ अर्पण कर दिया, छोड़ दिया, त्याग किया, उनके चरणों की सेवा करके उनको जिस काम के लिए आदेश देती है उसको पालन करते हैं कृष्ण स्वयं परब्रह्म होकर के भी, यशोदा मैया उनको कैसे नचाती हैं, गोपियां कैसे नचाती हैं प्रेम के द्वारा। इसलिए गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए ब्रज में यदि लता गुल्म वृक्ष होकर के भी जन्म ग्रहण करें, हमारा जीवन सार्थक है। अंत में कहते हैं वंदे नंद ब्रजेश तीर्णं पाद रेणुम अभिक्षण जासां हरि कथोद्गीत पुनात भुवन त्रयम्। गोपी नंद की जो गोपियां हैं नंद ब्रज की, नंद के गांव की, नंद गांव की, बरसाना की, ब्रज की जो गोपियां हैं उनके चरणों की एक धूली को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं उनके चरण को धूली को स्पर्श करने योग्य नहीं हूं। कौन कह रहे हैं? उद्धव जी जैसे लोग जो गोपियों को दर्शन करने के लिए कृष्ण ने उनको भेजा था, आज गोपियों के चरण में लुढ़क गए। इतना बड़ा प्रेम कृष्ण के प्रति प्रेम, गोपियों मैं तुम्हारी एक धूली, एक धूली मैंने क्या, एक चरण में तो लाखों इतनी धूली होती है, एक धूली कर रहे हैं तो किसी एक विशेष के लिए, कौन सी विशेष? राधा जी की चरण की एक धूली को मैं दूर से नमस्कार करता हूं, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। वंदे नंद ब्रजेश तीर्णं पाद रेणुम अभिक्षण जासां हरि कथोद्गीत पुनात भुवनत्रयम्। यदि श्रीमद भागवत से गोपियों का चरित्र निकाल दिया जाए तो श्रीमद भागवत शून्य हो जाएगा। वेदों से श्रीमद भागवत को निकाल दो तो वेद बेकार का है। वेदों से यदि भागवत निकाल दो तो वेद बेकार, और भागवत से यदि कृष्ण का चरित्र निकाल दो तो कुछ नहीं रहेगा, और इस कृष्ण के चरित्र से गोपियों का चरित्र निकाल दो तो कुछ और कुछ नहीं रहा, जीरो हो जाएगा, निर्विशेष ब्रह्म केवल रह जाएंगे। यही दिखलाना था गोपियों की सीमा, प्रेम की सीमा, ये श्रीमद भागवत दिखलाने के लिए व्यास जी ने प्रकट किया सुखदेव के माध्यम से परीक्षित जी को, और परीक्षित ने श्रवण किया। सांप उनको स्पर्श नहीं कर सका, यदि मरी गए तो फिर क्या होगा, तब तो ये सुना कहां। इसलिए परीक्षित महाराज मरे नहीं, नमीन कलेवर से कृष्ण के चरणों में गोलोक वृंदावन में पहुंच गए। समय रहती तो इसकी व्याख्या करता, इसलिए फिर कभी हम लोग देखेंगे, यदि ऐसा सौभाग्य होगा तो वृंदावन को मैं छोड़ करके यहाँ आऊंगा आप लोगों को कथा सुनाने के, यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो। आज यहीं तक समाप्त करता हूं। हमसे कोई यदि गलती त्रुटि हो गई हो, कठोर वचन निकल गए हो, तो आप लोग उसके लिए हमें क्षमा करेंगे। मैं कठोर वचन बोलने के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण की लीला कथाओं को ऐसे ही प्रेम पूर्वक श्रवण करा करके कृष्ण के चरणों में आपके चित्त को लगाने के लिए आया। इसलिए यदि कठोर वचन भी निकल भी गए हों तो आप लोग उसको मन में धारण न करेंगे, बल्कि हमने जो भागवत की कथा कही उनमें गोपियों का चरित्र सबसे निर्मल है, वैसा ही कृष्ण को भजन करने के लिए चेष्टा करें। हम जब पुरुष हैं तो स्त्री जैसा कैसे करेंगे? नहीं भाई, आत्मा स्त्रीलिंग है, कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, बाकी सभी स्त्री हैं। कोई अपने कर्म से पुरुष जैसा आया है, कोई स्त्री बन करके, कोई बाघ, कोई भालू, कोई सांप, कोई कुछ स्वजाति आत्मा एक समान है। कृष्ण की सभी प्यारी की आत्माएं हैं, ये राधिका से सबका प्रकाश है, ऐसा समझ करके गोपियों का जो चरित्र है ऐसे ही हम अपने को कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित करने की चेष्टा करें, हमारा जीवन सार्थक होगा। और यदि एक व्यक्ति ने भी इसको श्रवण करके वैसे ही यदि किसी के मन में आई ये इसी के लिए हम साधन भजन करेंगे और कृष्ण का भजन करेंगे, मैं समझूंगा जो हमारा यहाँ आना पश्चात देश में सफल रहा है। गौ प्रेमानंदे राधे राधे गोविंदा।